सलाम अलैकुम, सुबह खैर।
वालेकुम अस्सलाम।
कल रात अजीब रात थी, मैं ठीक से सो नहीं पाई।
लेकिन मैं काफी दिनों बाद अच्छी तरह सोया।
मसूद, एक सवाल पूछूं, सही सही जवाब दोगे?
हाँ जरूर।
मेरे वापस लौट आने और यहां मौजूद होने पे खुश हो या रेहाना की वजह से मुझे बर्दाश्त कर रहे हो?
ये कैसी बातें कर रही हो लाइया? बहुत दिनों से मैं खुद ही चाहता था कि तुमको फोन करूं और कहूं कि वापस लौट आओ, लेकिन सोचता था कि शायद मुझे देखकर तुम्हें तकलीफ हो।
मुझे तुमसे नफरत थी, तुम्हारे साथ रही और तुमको तकलीफ पहुंचाई। तुमको मैं परेशान करती थी और तुम बर्दाश्त करते थे। क्यों?
तुम्हें हक बजानिब समझता था। शायद मुझे मुहाज पर नहीं जाना चाहिए था, बल्कि तुम्हारे पास रहना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त तुमने किसी को खोया था।
तुम्हारे जाने और जहांगीर के जाने में बहुत फर्क था। वो अमेरिका गया, उसने वहीं शादी की ताकि वहां रह सके, लेकिन तुम जंग के लिए गए थे। तुमने अपने दोस्तों को खो दिया, अपनी जिंदगी को खो दिया। ऐसा मुमकिन नहीं था कि तुम ना जाते, वरना रुक जाते ना।
हाँ, ऐसा मुमकिन नहीं था कि मैं ना जाता।
जब रेहाना ने बताया कि तुम जहांगीर को फोन करने के लिए और उसको बताने के लिए तैयार हो गए हो कि अब तुमसे सब्र नहीं होगा, अब तुम सब्र नहीं कर सकते हो कि वो लड़की की जिसको तुमने अपनी बेटी की तरह पाला है उसके साथ अजनबियों की तरह पेश आओ, तब मैं समझी कि तुम रेहाना को बहुत चाहते हो। मैंने सोचा कि तुम्हारी इज्जत नफ्स ना टूटे, उसी वक्त मैंने ये इरादा किया कि उसको फोन करूं और उसे कहूं कि अगर इंसाफ से देखा जाए तो तुम बाप हो रेहाना के, ना वो बेवफा।
उसने क्या कहा?
कुछ भी नहीं, तुमसे माफी चाहता है, तुमको सलाम कहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अब भी अपने वादे पर टिके हो। कह रहा था काश सब लोग तुम्हारी तरह होते। कह रहा था कि जब भी रेहाना उसको फोन करती थी सोचता था कि यूं ही कह रही है, लेकिन कुछ बरसों बाद जब मैंने उसे ये सारी बातें बताई तब उसे यकीन हुआ। उसने तुमसे माफी मांगी।
अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी उससे यही चाहता।
नहीं, तुम इस तरह के ना होते।
मुझे देर हो रही है।
जब भी तुम्हारा फोन आता तो नंबर देखकर मैं बेचैन हो जाती, लेकिन एक चीज थी कि जवाब नहीं देती थी।
जानता हूं, मैं भी एतराफ करता हूं कि मैं रेहाना के बहाने से हर बार तुम्हारे घर फोन करता था ताकि तुम्हारी आवाज सुन सकूं, लेकिन खुद से कहता था कि अगर तुमने फोन रिसीव किया तो क्या कहूंगा।
सच कह रहे हो?
यकीन करो,
मैं हमेशा इंतजार करती थी कि शायद मेरे लिए मैसेज हो। जब से रेहाना के साथ साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी, उससे बात की थी, उस वक्त से मैं मुंतजर थी कि शायद मुझे फोन करो।
मतलब यह है कि बेकार में एक साल दूर रहे?
एक साल नहीं, पूरी जिंदगी, और मैं कसूरवार थी।
अब इस तरह की बातें ना करो।
क्यों? मैं एक दूसरे शख्स का बदला तुमसे ले रही थी। मसूद, तुम बहुत साबिर हो, रश्क होता है तुम पर।
साबिर और घमंडी, अगर ढीठ और जकी भी बढ़ा दो तो मेरे लिए फिर कोई भी खूबसूरती बाकी नहीं रहेगी।
क्यों नहीं? तुम्हारी एक बड़ी दूसरी मुश्किल और है, ये कि हमेशा सच बोलते हो, तुम हक बचाने को।
काश सब लोग तुम्हारी तरह ही सोचते।
सारे लोग मेरी तरह सोचते हैं, इसलिए कि तुमको समझने में कई साल लगे।
अब रहने भी दो,
मैं चाहती हूँ इस बात को कबूल कर लो।
लेकिन मैं तो अभी भी ढीठ, झक्की और घमंडी हूँ।
आखिरी वाले को छोड़कर सब तस्लीम करती हूँ।
अब वाकई मुझे देर हो रही है।
जल्दी खाओ, क्लास शुरू होने वाली है।
मैं क्लास में नहीं जाऊंगा, तुम जाना चाहते हो तो जाओ।
मुमकिन नहीं है, तुमको भी साथ आना पड़ेगा।
मैं रेहाना और सुलेमानी का मुंह नहीं देख सकता। मैं तो यही सोच रहा हूं कि वो लोग कैसे मुझसे आंखें मिलाएंगे।
ये बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है।
मैं जाना चाहता हूं, मैंने सब कुछ सोच समझ लिया है। मेरे लिए तो कोई भी चीज यहां नॉर्मल नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए सब कुछ बराबर है।
देखो फरीद, मैंने और तुमने साथ में शुरू किया, साथ में एडमिशन लिया, एक साथ रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम किया है। अगर जाना है तो दोनों साथ में जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम सुलेमानी और रेहाना के सामने शर्मिंदा हो या वो लोग तुम्हारे बारे में कुछ और सोचें। अगर कसूरवार हैं तो उनको भुगतना पड़ेगा। अब तुम बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो।
हमीद साहब, हम लोगों के बाहर जाने में कोई खर्च नहीं है, सिर्फ हम लोगों की रिजायत के ऊपर है, तो फिर शीशोपंच करने का क्या फायदा। मेरा रेहाना से अब कोई रिश्ता नहीं है, मैं उसके लिए अब नहीं रुकूंगा। मैं वहां से अपनी माँ और बहन के खर्च के पैसे भेज सकता हूँ, ये लोग ज्यादा मेरी कद्र करते हैं। यहाँ पर तो बॉस ने भी ऑफिस से कूड़े की तरह मुझे बाहर फेंक दिया।
लेकिन मैंने अभी निगार से बात नहीं की है।
बात करने का भी कोई फायदा नहीं है, वो मानेगी भी नहीं।
जानता हूँ, सिर्फ चाहता हूँ कि बाद में बात मेरे ऊपर ना आए। हेलो,
कैसे हैं इंजीनियर साहब?
नीना के ऑफिस की सेक्रेटरी है। आपकी मेहरबानी है मोहतरमा।
मैंने आपके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज में कांटेक्ट किया है, बहुत अच्छी शर्तों के साथ, बल्कि उस चीज से भी अच्छी जिसके बारे में नीना मैडम कह रही थी। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन ऑफिस से बाहर।
कहाँ?
गाड़ी है आपके पास?
नहीं, गाड़ी तो नहीं है। ठीक है, मैं एक घंटे के अंदर पहुँच जाऊंगा।
दुफिंची साहब, कैसे हैं आप?
बहुत अच्छे।
ये इसको क्या हो गया?
यानी तुम नहीं जानती?
ये लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं? नहीं जानती, लेकिन सबके सब मेरे साथ अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। रात में मेरी तबीयत जितनी ही अच्छी थी, आज मेरा हाल उतना ही खराब है।
तुम्हें क्या हो रहा है? रात का मामला क्या है? वो ये बातें तो मुझे पागल बनाए दे रही हैं।
कुछ भी मत सोचो, साफ बात करो, सब ठीक हो जाएगा।
मैंने उससे बात की थी, लेकिन जनाब बात टाल गए।
जब मैंने उन्हें कॉफी शॉप के सामने देखा था, उसी वक्त मुझे उनके सामने चले जाना चाहिए था।
अभी वो किसके साथ बात कर रहा था?
मैं नहीं जानती।
हम चलें उनका पीछा करने?
नहीं, तुम जाओ, मुझे घर जाना है।
ठीक है, चलो मैं पहुंचा दूं।
मैं अपने घर नहीं जा रही हूं।
तुम भी मशकूक बातें करती हो, अपने घर नहीं जाऊंगी का क्या मतलब? आओ चलो मैं पहुंचा दूं।
निगार, मैं तुम्हारे कुर्बान हो जाऊं। दो तीन दिन तहमुल से काम लो, खुद ब खुद सब समझ जाओगी, ठीक है?
अच्छा, अगर कोई बात है तो मुझे भी बताओ।
दो तीन दिन के बाद ना?
ठीक है पापा, ठीक है।
अगर फरीद से मुलाकात हो तो कहना मुझे काम है, अगर मुलाकात हो तो। वैसे फरीद भी तुमसे नहीं मिलेगा।
ओ मिस्टर शाहीन, तुमने जितनी भी अब तक बकवास की है मैंने कुछ नहीं कहा। दोस्तों के बारे में जो भी बातें की मैं चुप रही, लेकिन अब अपने होश ठिकाने लगा लो, क्योंकि तुम औकात से ज्यादा बढ़ रहे हो।
तुम जाओ हमीद से कहो कि थोड़ी तुम्हें तमीज सिखा दे।
मिस्टर फरशीदी, अपनी जबान को लगाम दो, वरना मैं भी बता दूंगी तुमने फरीद के साथ क्या किया है।
बता दो, गलती तो मैंने की है उसे कर्ज देकर। तुम संभल के रहना कि मेरा मुंह न खुले।
अगर तुम्हारा मुंह खुल गया तो तुम क्या कहोगे?
मुझसे लड़ने के बजाय फरीद से जाके कहो कि मेरे पैसे वापस कर दे।
सूदखोर कहीं का, जरूर इसे अपने हालत में ऐसे पैसे चाहिए होंगे।
छोड़ो, तुम फिक्र ना करो, जैसे भी होगा उसका पैसा उसके मुंह पे मारेंगे। मैं जरा चलो देखूं ये हमीद कहाँ है।
अपना ख्याल रखना।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की असल वजह 10 मीटर की दूरी से एक भारी चीज का मकतूला पर गिरना है। अलबत्त मेरी तहकीक भी कामयाब रही है, लेकिन कोई गवाह नहीं है, या शायद मौजूद है मगर वो गवाही नहीं देना चाहता।
इसका मतलब आपने कातिल का पता लगा लिया?
हाँ, पता तो लगा लिया है, लेकिन साबित नहीं कर सकता। कातिल से ज्यादा अहम कत्ल की वजह और मकसद है जो वाजह नहीं है। और हाँ, मैंने कुछ दूसरे मसलों को भी ढूंढ निकाला डॉक्टर।
जैसे?
हर चीज मददगार साबित हो सकती है डॉक्टर।
जी हाँ, हर चीज और कोई भी मेरी मदद कर सकता है। जैसे ये कि स्टूडेंट्स के मुतालबा से इतनी सख्ती के साथ क्यों मुकाबला किया गया।
तो आप मुझसे तफ्तीश कर रहे हैं?
आपसे नहीं, बल्कि आप दोनों से तफ्तीश कर रहा हूं।
मुझसे? मैंने क्या किया है?
मैं जज नहीं हूं, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग अपने गलत फैसलों पर इसरार करने की वजह से यूनिवर्सिटी में शदीद कशीदगी का बाइस बने हैं।
आपकी तहकीक बेकार है मनुचारी साहब। آپ کے لیے یہی مناسب ہے کہ آپ قاتل کو تلاش کریں، نہ یہ کہ ان چیزوں کے بارے میں جن کے آپ اہل نہیں ہیں ڈاکٹر سلمانی کے چاہنے میں آ کر کالج کے عہدیداروں پر الزام لگائیں۔ ہم لوگوں کے پاس دوسرے بھی ضروری کام ہیں کہ ان کو انجام دیں، آپ جا سکتے ہیں۔
یاد رکھیے گا کہ ڈیوٹی کے دوران آپ لوگ مجھے اپنے دفتر سے باہر نکال رہے ہیں۔
میں نے یہ جسارت نہیں کی صاحب، صرف آپ کے الزامات اسے اور زیادہ سنگین ہونے سے روکا ہے۔
میری بات مانے ڈاکٹر کہ آپ لوگوں نے غلطی کی ہے۔
آپ نے خود ہی کہا ہے کہ آپ جج نہیں ہیں کہ کسی کے بارے میں حکم صادر کریں، صحیح نا؟
یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تم کو اس کے ہاتھ میں کوئی بہانہ نہیں دینا چاہیے تھا۔
اس کو روکنا بہت ضروری تھا، ورنہ یوں ہی ہم لوگوں پر الزام لگاتا رہتا۔ میں ان لوگوں کو بہت اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور بہانہ تلاشتے ہیں۔
میں کچھ نہیں جانتا، بس یہ سمجھ لو کہ حالات بہت خراب ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں رپورٹ نہ بھیجے۔
ڈرو نہیں، اس کا یہ کام نہیں ہے، اس کا کام قاتل کو تلاش کرنا ہے، وہ اندھیرے میں تیر چلا رہا ہے۔ یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو، لیکن ہمیں منو چہری سے تیز کام کرنا پڑے گا۔ اسلانی کے قتل کی تفتیش میں جو کوتاہی برتی گئی ہے اس پر ایک رپورٹ تیار کیا ہے، اس کو منو چہری کے دفتر بھیجوں گا تاکہ یہ کیس دوسرے کو دے دیا جائے۔
میں نہیں چاہتا کہ معاملہ اور زیادہ الجھے، میں چلتا ہوں، کلاس کا وقت ہو گیا، تمہارے جو جی میں آئے کرو لیکن اپنی دستخط سے۔
دیکھیے انجینئر صاحب، میری آفر نینا میڈم کی آفر سے اچھی ہے اور اس کا رزلٹ بھی جلدی مل جائے گا۔ نینا کا صرف نام اور شہرت ہی ہے، آپ صرف ارادہ کیجیے، ہم آپ کو فوراً بھیج دیں گے۔
لیکن میں سمجھ رہا تھا آپ لوگ ساتھ میں کام کرتی ہیں۔
آپ نینا اور اس کی کمپنی کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو ایک اچھی آفر دی ہے، وہ صرف زیادہ پیسہ کمانا چاہتی ہے۔
اور آپ نہیں چاہتی؟
کیوں نہیں، لیکن میرا خرچ کم ہے۔ چھوڑیے، میں آپ سے ایک اور چیز کہوں، آپ کو بھیجنے سے ہم لوگوں کو ضرور پیسہ ملے گا، لیکن نینا ہمارا حق نہیں دینا چاہتی۔ میری آفر دوستانہ ہے، میں چاہتی ہوں خود اپنے لیے کام کروں۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟
میں اکیلا نہیں ہوں۔
چھوڑیے، میں آپ کو ایک دوسری آفر دوں، چونکہ یہ میرا پہلا کام ہے، جو پیسے بیچ والے آدمی کو دینے وہ میں آپ کو دوں گی، اس شرط پہ کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی راضی کریں۔
کیا میں آپ کو دلال دکھائی دیتا ہوں؟
آپ کے دوست فرید کو تو ان پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔
آپ کو کیسے پتا؟
اس نے خود مجھے بتایا۔ ہر آدمی کا 30 لاکھ، 4 آدمی ہوں گے تو 1,20,00,000 آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں ڈالوں گی، یہ پیسہ آپ لوگوں کے کام آ سکتا ہے۔
آپ نے یہ آفر فرید کو ہی کیوں نہیں دیا؟
میں اس کی انا کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی، اس کے علاوہ کیا آپ باس نہیں ہیں؟
میں
صاف صاف ایک بات کہوں، اگر میری بات مان کے آپ باہر چلے گئے تو ایک کام میں آپ کے لیے کر سکتی ہوں کہ آپ اپنا پروجیکٹ میرے حوالے کر دیں، اس کے بدلے میں آپ کے لیے پیسے لا سکتی ہوں، آپ اور آپ کے دوستوں کی زندگی ان پیسوں سے بدل جائے گی۔
ٹھیک ہے، میں فرید سے بات کروں گا۔
مرادی صاحب، بھولیے گا نہیں کہ میری ایک رقیب بھی ہے، اگر اس کا ہم لوگوں کے معاملے کا پتہ چل گیا تو معاملہ خراب کر دے گی۔ اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ کا کام بھی جلدی ہوگا اور مطمئن بھی، اور پیسہ بھی ملے گا آپ کو۔
نہیں، اس کو پتا نہیں چلے گا۔
اپنا خیال رکھیے گا، تشریف لانے کا شکریہ،
خدا حافظ۔
لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی نہیں ہے، لیکن اگر آپ شرف دیں تو میں آپ کو پہنچا دوں۔ دیر یہ نہیں، مجھے صرف تم سے بات کرنی ہے۔ حمید، حمید رکو، بات کرو مجھ سے۔
शर्म नहीं आती मेरा पीछा कर रही हो?
फिलहाल तो तुम्हें मुझसे ज्यादा शर्म आनी चाहिए। वो कौन है?
काम की मीटिंग थी।
काम की मीटिंग, वो भी पार्क में?
बाद में तुमको सब बता दूंगा।
हाँ तो बताओ, मैं जानना चाहती हूँ इसी वक्त।
ये मैडम हम लोगों के जाने का सारा इंतजाम करेंगी।
कहाँ जाने का?
कहीं भी।
हमारे स्टूडेंट्स कब से ऐसे काम करने लगे?
हमारे स्टूडेंट नहीं है।
झूठ मत बोलो।
जब मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं क्या बात करूं?
हमीद, हम कहीं भी नहीं जा रहे, हम एक साथ फैसला करेंगे, अकेले नहीं।
ठीक है, चिल्लाओ मत, यहाँ बहुत बुरी बात है।
जो काम तुम कर रहे हो वो बुरा है।
मैंने कोई बुरा काम नहीं किया।
क्यों नहीं? सबसे बुरा तो यही है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो।
मैंने सच कहा है।
हमीद, मैंने इस लड़की को यूनिवर्सिटी में देखा है।
यार तुम गलती कर रही हो।
हाँ मैं गलती कर रही हूँ, अभी तक गलती कर रही थी, लेकिन अब के बाद गलती करना नहीं चाहती।
अरे फरीद, सुनो फरीद, मैं तुमसे कह रही हूँ। तो फंक्ची साहब, मैं आपको आवाज दे रही हूँ, आपको सुनाया नहीं दे रहा क्या? क्यों जवाब नहीं दे रहे हो मेरा?
दिल नहीं चाह रहा, साफ साफ कहूँ, जाओ अपना काम करो।
पागल हो गए हो क्या?
हाँ पागल हूँ, दीवाना हूँ, दिमाग खराब हो गया। यहाँ से जाओ।
जाऊं? कहाँ जाऊं?
जाओ अपनी जिंदगी बनाओ, जहाँ तुम खुश रह सको, जाओ जहाँ थी। मैं तुमको देखना नहीं चाहता, नहीं चाहता, समझ रही हो?
ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन मुझे बताओ क्यों?
क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मुझे नफरत है, समझ रही हो?
तुम खुद समझ रहे हो कि क्या कह रहे हो?
नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ, उसी तरह जैसे तुमने नहीं समझा। मेरे रास्ते से हटो।
ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं तो ये कहने आई थी कि शाहीन, उसको अपना पैसा वापस चाहिए।
मेरी बेटी, अब मैं क्या कर सकती हूँ? अगर चाहो तो तुम्हारे डैडी को फोन करूँ और उनसे कहूँ कि शिप की जगह हवाई जहाज से आए, शिप को किसी दूसरे के हवाले करें।
नहीं अम्मी जान,
ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। तुम ही बताओ बेटी, मैं क्या करूँ? जो भी कहूँगी मैं वही करूँगी।
आज मैंने उसे दोबारा उस लड़की के साथ देखा। जानती है फिर उसने क्या किया? बजाय इसके कि मुझसे सॉरी कहे, मेरे ऊपर चीखने लगा।
तुम समझ रही हो क्या कह रही हो? हमीद में सारी बुराइयां हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकती। अब उसके बारे में कुछ न कहना।
अभी ईरान में है, तब तो ये हाल है उसका। उस वक्त क्या होगा जब वो मुझे छोड़ के चला जाएगा?
तुम्हारे बाप भी कभी नहीं रहते थे, आधा साल तो उनका ड्यूटी पे गुजरा, तो फिर मैं इस तरह से उनके बारे में सोचूं?
आपका मामला अलग है अम्मी, आप तो शुरू से जानती थी कि आप किससे शादी कर रही हैं, डैडी क्या काम करते हैं। आप इन हालात को कबूल कर चुकी थी, लेकिन हमीद तो इतने ही दिनों में बदल गया है।
ठीक है, तुम भी चली जाओ।
मैं नहीं जाना चाहती। हर बार जब भी डैडी आते हैं और जाते हैं, मैं देखती हूँ कि आप पर क्या गुजरती है। मैं इन चीजों को देखती हूँ और उसके बाद भी चली जाओ।
मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ और तुम्हारे एतबार से बूढ़ी हो रही हूँ। तुम भी अपनी जिंदगी के लिए बर्दाश्त करो और उसके साथ चली जाओ।
अम्मी, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको, डैडी को, पढ़ाई को छोड़कर परदेश चली जाऊँ किस लिए? मैंने हमीद से कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, वो जाना चाहे तो चला जाए, लेकिन जाने से पहले मेरे बारे में फैसला कर ले। और आप भी डैडी से कुछ मत कहिए।
आने के बाद जब पता चले तो बेचारे को हार्ट अटैक हो जाएगा।
कयामत तो नहीं आ जाएगी ना? इस तरह से हमीद को भी सुकून रहेगा, जिसके साथ भी जाना चाहे चला जाए। मैं इसे ज्यादा जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप मेरी मदद करिए।
क्यों नहीं मेरी बेटी?
शुक्रिया कैप्टन, उन मालूमात के लिए जो आपने नीना कारनीना के बारे में मुझे दी।
कोई बात नहीं,
लेकिन वो मालूमात जो आपने मवेशियों के इलाज के बारे में भेजी हैं, वो फाइल खुल नहीं रही, उसे दोबारा भेजें।
ठीक है, मैं दोबारा भेज दूंगा।
इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं चाहता हूं कि शाहीन फरशीदी के बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी जाए। उसकी तस्वीर आपको ईमेल कर दी है।
ठीक है,
मुमकिन है वो दूसरी शनाख्त के साथ फरार होने की कोशिश करे। कैप्टन
शाहीन फरशीदी? जी जी,
सुन रहे हैं ना कैप्टन?
जी जी सुन रहा हूँ जी जी।
ठीक है, मुझे इस केस के जज मिस्टर रजाई से शाहीन फरशीदी के घर और नीना कारीना के ऑफिस की तलाशी लेने के लिए एक इजाजतनामा चाहिए बहुत जल्दी, और यूनिवर्सिटी के चांसलर की सेक्रेटरी समीरा फरामर्जी के बारे में भी फौरन सारी जानकारी चाहिए।
समीरा फरामर्जी, आपको मालूम है कर्नल क्या आप क्या कर रहे हैं?
हाँ मालूम है, मैं दूसरी चीजों तक पहुंच रहा हूँ।
एक बात है, किसे कहिएगा नहीं, यूनिवर्सिटी ने आपकी शिकायत की है कि आखिर इस केस को हल करने में इतनी देर क्यों हो रही है, आज ही फैक्स आया है।
ठीक है, देखिए कैप्टन, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप सिर्फ वो काम कीजिए जो मैंने आपसे कहा है।
जी सर, कोई और बात?
नहीं,
खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
मैडम असलानी।
वाह वाह मोहम्मद अली, यहां क्या कर रहे हो?
मैं
जाओ गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे काम है, जाओ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
मुझे पहले ही आपसे रابطہ करना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, हमारा काम ही ऐसा है कि सब कुछ पोशीदा रहना चाहिए।
आप फिर आ गए कि मैं अपनी शिकायत वापस ले लूं?
नहीं, शिकायत तो आपका हक है, लेकिन कत्ल का चार्ज कोई मामूली बात नहीं है। इस मामले को मुझे हल करने दीजिए, आप मेरी मदद कीजिए।
मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, आप मुझसे क्या चाहते हैं? जाऊँ जाकर अपने गमजदा माँ बाप से कहूँ कि सब्र करें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, किसी से कुछ ना कहें? ठीक है, लेकिन मैं नहीं जानती, आप मुझे बताइएगा कैसे?
हक बात का कोई जवाब नहीं होता, लेकिन आप यकीन करें कि मैंने ऐसा कोई काम शुरू ही नहीं किया जिसका नतीजा ना निकला हो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। देखिए मैडम असलानी, अगर यूनिवर्सिटी के चांसलर की शिकायत की बात सामने आ रही तो इससे सिर्फ केस और उलझ जाएगा, बस।
कर्नल साहब, मैं इन बातों को समझ सकती हूँ क्योंकि मैं माँ नहीं हूँ, मेरी माँ पागल हो रही है, मेरी बहन इस वाकये में कसूरवार भी होती ना तो उसकी सजा मौत नहीं थी।
बेशक ऐसा ही है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि कातिल को पकड़ के रहूँगा, लेकिन मुझे आपसे कुछ ज़ाती सवाल करने हैं।
जी पूछिए।
मुझे आपकी बहन का ईमेल एड्रेस और पासवर्ड चाहिए।
मैं नहीं जानती, अगर जानती होती तब भी आपको ना बताती, क्योंकि ये एक ज़ाती बात है।
मैडम मैं फजूल काम के लिए नहीं आया हूँ, मैं ये अपने काम की वजह से मांग रहा हूँ, आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए।
ठीक है, पहले मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं खुद कुछ चीज़ों को चेक करूँ।
मुझे आपकी बहन के सारे पर्सनल ईमेल्स चाहिए और आप उनमें से एक भी डिलीट नहीं करेंगी। अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से उन्होंने कोई किताब या गिफ्ट वगैरह भी लिया हो तो वो भी आप मुझे दे दें।
मैं समझ गई हूँ आप क्या तलाश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरी बहन के कद को ज़ाती नौयत का कद साबित कर यूनिवर्सिटी को बरी कर दें। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
मैडम असलानी प्लीज़ रुक जाइए, आप गलती कर रही हैं, मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं सारी चीज़ों को समझूं ताकि नतीजे पर पहुंचूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर यूनिवर्सिटी का कोई एक भी अहदेदार इस मामले में कसूरवार पाया गया तो मैं वो पहला शख्स हूंगा जो उसके खिलाफ गवाही दूंगा। आज ही मुझे पता चला है कि यूनिवर्सिटी ने मेरे बॉस के पास मेरे खिलाफ एक लेटर भेजा है, अगर यकीन नहीं है तो मैं दिखाता हूँ वो लेटर, प्लीज मेरी मदद कीजिए।
ठीक है,
शुक्रिया। अच्छा, मुझे तुम्हारी सच्चाई पर शक हो रहा है, तुमने अपने बयान में कहा था कि तुमने देखा कि शाहीन एक कोने में बैठा था, तुम गए और उसे सहारा दिया, और जाते वक्त तुमने रजा साहब को देखा, उसके बाद तुमने मुझसे कहा कि शाहीन झूठ बोल रहा है कि वह लैला का आशिक है और ये तुम हो जो उसके आशिक थे। ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में उसकी बहन से बातें की हैं।
आपने मेरे बारे में कोई बुरी बात उनसे नहीं कही है?
क्यों नहीं, इत्तेफाक से कही है। सुनकर वो बहुत हंसी। मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मैं नहीं बता सकता।
देखो लड़के, बेहतर होगा कि अच्छे बच्चों की तरह रहो, समझ रहे हो ना? तो अब बताओ यहाँ क्या कर रहे हो तुम, मेरे सवाल का जवाब दो।
मैं नहीं बता सकता, मैंने सर से वादा किया है।
वादा किया है? तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मेरे साथ थाने चलो, ताकि थोड़ा बहुत वादा मुझसे भी करो?
नहीं, मैं नहीं चाहता।
शाबाश अच्छे लड़के, शाबाश के तुम नहीं जाना चाहते, मैं भी तुम्हें नहीं ले जाना चाहता।
इस तरह तो सर नाराज हो जाएंगे।
कौन से सर?
सुलेमानी सर।
ठीक है।
डॉक्टर साहब, सलाम
अलैकुम।
क्या हाल है?
बहुत शुक्रिया।
मैं आपसे अलग से कुछ बात करना चाहता हूँ।
मैं हाजिर हूँ, कोई मुश्किल तो नहीं?
नहीं
दोस्तों, बाद में मुलाकात होती है।
आपसे मिलना बहुत जरूरी था, आपके लिए कुछ खुशखबरियां हैं और एक प्राइवेट सवाल भी आपसे पूछना है।
सब खैरियत तो है?
जेनिस काउंसिल के बारे में आपने कुछ सुना है?
कुछ दिनों पहले मेरी तकरीर हुई थी, सुना है डॉक्टर खुदाई उसकी सरबराही के उम्मीदवार हैं।
उम्मीदवार तो नहीं, बल्कि हमारे बाद वाले ऑप्शंस में से है। मैं जानना चाहता हूं कि डॉक्टर जाबरी ने इस पोस्ट के बारे में कुछ कहा?
नहीं, क्यों, क्या हुआ?
मिनिस्ट्री में जितनी बार भी बात हुई, मैंने और कुछ दूसरे लोगों ने आपका नाम लिया। मैंने जानबूझकर डॉक्टर जाबरी से कहा था कि वो आपको इन्फॉर्म कर दें कि आप मुझसे फ़ोन पर बात कर लें, लेकिन जैसा कि मुझे अंदेशा था, उन्होंने आपसे नहीं बताया। इत्तेफाक से सिर्फ 2 रात पहले की बात है।
कुछ घरेलू मसाइल में उलझा हुआ था।
अरे मसला यही तो है डॉक्टर, मिनिस्ट्री को यह खबर मिली है कि
क्या
पता नहीं, मैं किस तरह से बताऊं।
कोई बात नहीं, आप बताएं। मुझे आदत हो गई है, इन चंद बरसों में हर तरह का इल्जाम मुझ पर लगा चुके हैं। रिश्वत लेना, ब्लैकमेलिंग, ना जाने क्या क्या, स्टूडेंट से अपना काम करवा कर उन्हें नंबर देना अगर कानूनी रवाबित, और दूसरे किस्म के सारे इल्जाम। दोस्तों का कर्म है, लेकिन चूंकि अभी बाइंसाफ इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं, इसलिए मैं खुशकिस्मती से इन सारे इल्जाम से बरी हो गया। मुझे अब आदत हो गई है डॉक्टर, इस बार क्या साजिश हुई है मेरे खिलाफ?
डॉक्टर आप मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन इस रेहाना बेगी का आपसे क्या रिश्ता है? आप चाहें तो जवाब ना दें।
आप क्या सोचते हैं?
अब मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद आप ही से पूछ रहा हूं।
मेरे पास कोई जवाब नहीं।
मैं जानता हूं डॉक्टर कि ये रिश्ता सिर्फ अफवाह है, बहुत मुश्किल है, तो आप मुखालफत कीजिए।
मैं मुखालफत नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोगों के बीच एक रिश्ता है। अलबत्ता उस तरह का नहीं जैसा आप सोच रहे हैं।
हम लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं, मगर ये कि खुद आप ही लोग बताइए।
ये रेहाना बेगी मेरी बेटी है।
क्या आपकी बेटी है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं।
ये रेहाना बेगी उसी डॉक्टर बेगी की बेटी है जो जंग के जमाने में ईरान से गया और फिर पलट कर नहीं आया। उस वक्त रेहाना 1 साल की थी। मैं और उसकी माँ यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे। जब मुझे पता चला कि वो डॉक्टर बेगी से अलग हो गई है, तो मैंने अपना रिश्ता उसके पास भेजा। उसके बाद मैंने रेहाना को पाला। डॉक्टर मोहम्मदी, रेहाना बेगी मेरी महरम है, मेरी बेटी है।
फिर आपने आज तक किसी से कुछ बताया क्यों नहीं?
इसलिए कि मैंने उसके बाप से वादा किया था। मुझे आप ये बताइए कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटते? डॉक्टर बेगी जब से ईरान से गए तो उन्होंने हर चीज से अपना मुंह मोड़ लिया, अपने लोगों से, अपने मुल्क से, हद तक अपने घर वालों से। अब आप समझे कि उस दिन तादीबी कमेटी के जलसे में मुझे क्यों आग लग गई थी? क्योंकि डॉक्टर बेगी का चेहरा वहां मौजूद एक एक शख्स में मुझे नजर आ रहा था, क्योंकि अगर वो नहीं जाते और रुक जाते तो यही अपने डॉक्टर शरीफी का भाई महमूद, शायद वो उसका ऑपरेशन करते और वो नहीं मरता, शायद अभी जिंदा होता। मैं अभी आपसे कह देता हूं कि ना मुझे पोस्ट चाहिए और ना कोई दूसरी चीज। वो वाहि चीज जो मैं आपसे चाहता हूँ वो ये कि आप प्लीज तादीबी कमेटी में स्टूडेंट्स के खारजे का जो मसला है उसे हल कर दें। मुझसे बार बार ये ना कहिएगा कि अभी मीटिंग नहीं हुई, मिनिस्टर साहब बाहर गए हुए हैं, असिस्टेंट मिनिस्टर नहीं आए, पोल्यूशन ज्यादा था, मिनिस्ट्री ऑफिस में छुट्टी थी, ये चीजें मुझसे ना कहिए। डॉक्टर, हम और आप पैसे ले रहे हैं ताकि इस तरह की मुश्किलात दोहराई ना जाएं।
खुदा की कसम मैं किसी एक का भी खारजा नहीं होने दूंगा, सिर्फ आप मुझे मोहलत दें।
मैं शर्मिंदा हूं डॉक्टर के यही काम नहीं कर सकता, हमारे पास टाइम नहीं है।
एक मिनट डॉक्टर।
माफ कीजिएगा कर्नल साहब, इस वक्त बिल्कुल मूड नहीं।
अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। हाँ,
मैं भी जाऊं।
तुम कहाँ जाना चाहते हो?
जाता हूँ ना।
जल्दी ना करो, गली कोचों में बेकार घूमने फिरने से अच्छा है कि मेरे साथ रहो।
नहीं नहीं, कसम से बहुत थका हुआ हूँ।
माफ कीजिएगा डॉक्टर,
एक मिनट होल्ड करें। मनु चेरी साहब, आपसे मैंने अर्ज किया, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं अभी घर जाना चाहता हूँ।
मेहमानी चाहिए आपको?
मेहमान हबीबे खुदा है, आइए चलें।
वो भी है,
वो तो हमेशा ही रहता है, आइए चलें। हेलो,
मैं खुद हैरान हूँ, हमीद ऐसा लड़का नहीं है कि एक एक बाहर जाने का इरादा कर ले और मुझसे कुछ ना बताए।
मुझसे कहा था उसने, संजीदगी से नहीं मजाक में, ये उस लड़की का काम है। हमीद बहुत बदल गया।
तुम रो नहीं, सब्र करो ना, देखो क्या कहता है। अगर वो चला जाए तो मेरा भी तो कोई नहीं।
उसने सब कुछ सोच रखा है, कहता है मैं चला जाऊंगा और 6 महीने बाद तुम्हें और अम्मी को ले जाऊंगा।
ठीक है, बहुत अच्छा है, हम लोग वहाँ जाएंगे और मजे करेंगे।
मैं नहीं जाना चाहती, मेरी यहाँ पर पढ़ाई है, काम है, घर वाले हैं, जिंदगी है। इसके अलावा मैं हमीद को जानती हूँ, वो बस वहाँ पहुँच जाए फिर मुमकिन नहीं है कि वापस लौटे।
तुम भी अजीब हो, जैसा कह रही हो ऐसा भी नहीं है। तुम परेशान ना हो, सब लोगों की जिंदगी के शुरू में ऐसा ही होता है।
अब मैं जा रही हूँ।
कहाँ? रुको, मैंने उसे फोन किया, वो अभी
नहीं,
आ जाए।
आप उससे बात कर लें तो बेहतर है, मैं उसे देखना नहीं चाहती। खुदाफिस।
खुदाफिस।
बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं, तुम मुझे मायूस कर रहे हो मोहम्मद अली, बद से बदतर। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि असलानी के घर नहीं जाओगे?
सर, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है।
बहुत दिलचस्प है, अब मेरी समझ में आ रहा है, जनाब रिश्ते के लिए जाना चाह रहे थे। अगर आप इसकी तायद नहीं करते तो मैं ये समझता कि ये मुझे बेवकूफ बना रहा है।
मोहम्मद अली की मुश्किल यह है कि अभी हम लोगों के रस्म रिवाज को अच्छी तरह से समझ नहीं पाया, वरना इसका दिल पाक और साफ है। अलबत्ता शायद आप भी रस्म रिवाज को अच्छी तरह समझ नहीं पाए कर्नल साहब, 3 घंटे से आप यहाँ हैं।
डॉक्टर, मेरा दिल भी पाक और साफ है। माफ कीजिएगा। हेलो जी मैडम।
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एक बड़ा हादसा हो गया है।
आपके साथ या आपके कुत्ते के साथ?
मेरे कुत्ते के साथ, उसे खांसी आ रही है।
तो फिर उसे खाने के लिए स्टार्च दे दीजिए।
मगर मेरा कुत्ता स्टार्च खाता है।
फिर उसे कफ सिरप दे दीजिए,
लेकिन 1/3 चम्मच।
अरे 1/3 क्यों?
क्योंकि वो आपसे बहुत कमजोर है।
मैं मजाक कर रही हूँ, मेरा कुत्ता तो पिछले साल मर गया।
मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहती थी, आपका काम हो गया है।
वाह, बहुत अच्छे, क्या पेशा वराना।
लेकिन आपके भतीजे के बारे में बता दूं कि अगर उन्होंने कल तक 10 मिलियन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए तो सारा मामला खराब हो जाएगा।
इसे आप मेरे हिसाब में रखें।
जैसा आपका हुक्म। आपने खाना खाया?
नहीं। आपने खाया?
नहीं, मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ, अगर चाहे तो मैं वहाँ का एड्रेस SMS कर दूँ।
शुक्रिया,
बाय,
खुदा हाफिज। तो फिर मुझे इजाजत है चलने की?
मेरे ख्याल में आपका काम बहुत ज्यादा सख्त नहीं है।
सख्त तो है, मैं ज्यादा सख्त नहीं समझता, आप तो जानते ही हैं। मैंने आपको बहुत जहमत दी डॉक्टर।
कोई बात नहीं।
मनुचेरी साहब
जी,
क्या आप मुझे पहुंचा सकते हैं?
नहीं, लगता है इसका दिमाग भी खाली है। बेटा मैं पुलिस वाला हूँ, वो वायरलेस जो तुमने गाड़ी में देखा है वो पुलिस वालों का वायरलेस है, टैक्सी का नहीं।
यानी आप नहीं पहुँचाएंगे?
देखिए
मुझे गलती हो गई।
नहीं बेटा, तुमने कोई गलती नहीं की। कर्नल साहब, आप इसे लेकर आए हैं, आप इसे ले जाएं।
यानी कोई दूसरा रास्ता नहीं है?
नहीं भाई।
ठीक है, कुछ करता हूँ, आओ चलो। कहाँ?
क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे पहुँचाएंगे?
क्या मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ बच्चे? अपने घर खुद ही जाओ। मेरे ख्याल से इस पार्क के पीछे एक बस स्टॉप है, जाओ, चलो जाओ, अपने घर जाना, कहीं और मत जाना। मोहम्मद अली, चलो अब आ जाओ, तुमको रास्ते में कहीं छोड़ दूंगा, आओ।
ये काम जो तुम कर रहे हो बेइंसाफी है। मैं 10 करोड़ कहां से लाऊं तुम्हें दूं? सिर्फ 3 महीने पहले तुमने ये पैसे मुझे दिए थे, मैंने तो बाबा को जेल से भी नहीं छुड़वाया है, तुम सब कुछ खराब कर रहे हो।
तुम क्यों नहीं समझना चाहते फरीद? मैं वो पैसा नहीं लेना चाहता तुमसे, लेकिन मजबूर हूँ। अरे तुमने तो देखा है उस लड़की ने मुझसे क्या कहा है, मेरे हालात तुम्हारे जैसे नहीं है। फौजी ट्रेनिंग की मुश्किल, यूनिवर्सिटी पोजीशन की मुश्किल मेरे साथ लगी हुई है।
ठीक है जाओ, लेकिन कुछ दिन बाद।
मैं रुक नहीं सकता, कुछ तो करो।
शाहीन शर्म करो, तुम चाहते हो कि मैं अपनी माँ बहन का घर बेच दूं और उनको गली कूचों में छोड़ दूं?
नहीं जानता।
जब नहीं जानते तो बकवास मत करो। शाहीन, वो घर मेरी माँ और खाला को विरसे में मिला है, अगर मैं चाहूं तो भी नहीं बेच सकता।
लेकिन जल्द से जल्द मुझे ईरान से निकलना है, मुझे बाहर जाना है अपने बाबा के पास।
क्या है, बाबा बाबा कर रहे हो? 30 साल के हो और तुम्हें 3 बच्चों का अब्बा होना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, जाओ उस चेक के ऊपर दावा ठोंक दो, मैं जेल चला जाऊं, तुम भी अमेरिका अपने बाप के पास चले जाओ।
अगर मजबूर हुआ तो ये काम भी करूंगा।
शाहीन तुम पागल हो गए हो, तुम वाकई उस चेक पर दावा करोगे?
अरे मजबूर हूं बेवकूफ, मजबूर हूं।
शाहीन तुम्हारा हाल मुझसे भी ज्यादा खराब है, अगर कोई बात है तो बता दो मुझे।
कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ अपने पैसे चाहिए।
ठीक है, जो पैसे तुमने मुझे दिए थे उसके 15 मिलियन बचे हैं, अगर तुम्हारा काम उन पैसों से हल हो जाता है मैं दे दूंगा।
फरीद जो कर सकते हो करो, मैं बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ हूं।
मैं सच कह रहा हूं शाहीन, उन पैसों में सिर्फ इतना ही बचा है।
ठीक है, तुम इतना ही दे दो, बाकी पैसों के लिए मैं मोहलत दे दूंगा।
ठीक है।